नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश जी, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय निशानेबाजों ने जर्मनी के म्यूनिख में संपन्न ISSF विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुरुषों और महिलाओं के लिए हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कल से चेन्नई में शुरू और ICC एक दिवसीय बल्लेबाजी महिला रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना शीर्ष पर पहुंची। भारतीय निशानेबाजों ने जर्मनी के म्यूनिख में हाल ही में संपन्न हुए ISSF विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक सहित 4 पदक हासिल किए। भारत अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। एक रिपोर्ट।
ISSF विश्व कप के इस वर्ष के शुरुआती दोनों संस्करणों की तरह जर्मनी के म्यूनिख में भी भारतीय निशानेबाजों का दबदबा देखने को मिला। भारत के लिए पदक की शुरुआत 2 बार के ओलंपिक खिलाड़ी एला वेनिल वाला रिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कांस्य पदक जीतने के साथ की। 25 वर्षीय एला वेनिल ने शानदार कौशल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में 231.2 का स्कोर दर्ज किया। भारत की कांस्य पदक तालिका में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में सिफ्त कौर सामरा ने भी अपना नाम दर्ज कराया। 23 वर्षीय सामरा ने 453.1 के स्कोर के साथ पोडियम पर अपना स्थान पक्का किया। इन कांस्य पदकों के बीच भारत को तलाश थी पदक तालिका में अपने पहले स्वर्ण पदक की, और भारत के लिए ये काम किया युवा प्रतिभाशाली सुरुचि सिंह ने। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना दबदबा कायम रखते हुए महिलाओं का भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। महज 19 साल की सुरुचि ने अपने शानदार खेल की परिपक्वता का परिचय देते हुए फाइनल में कुल 241.9 का स्कोर दर्ज किया और पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। ये इस साल ISSF विश्व कप में सुरुचि का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। वहीं भारत के लिए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में अर्जुन सिंह बाबूता और आर्या बोरसे की जोड़ी ने देश के स्वर्ण पदकों की संख्या को और बढ़ाया। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन की वांग जिफेई और शेंग लिहाओ की जोड़ी को 17-7 के निर्णायक स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। म्यूनिख में वर्ष के तीसरे ISSF विश्व कप में 36 सदस्यीय भारतीय दल ने हिस्सा लिया, जबकि भारत ने इससे पहले ब्यूनस आयर्स में 8 पदक जीते थे, लीमा में 7 पदक अपने नाम किए थे। 2025 ISSF विश्व कप का अगला चरण सितंबर में चीन के निंगबो में होगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
भारतीय टीम वापस स्वदेश लौट चुकी है और हम जब देख रहे थे 25 वर्ष 23 वर्ष 19 वर्ष युवा खिलाड़ी विदेश में जाके इतने बड़े स्तर पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे गिरीश जी?
बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। 36 सदस्यीय भारतीय शूटिंग दल म्यूनिख गया था और वहां से वापस आया, तो आज NRI ने काफी, जो उनके प्रेसिडेंट हैं कलिकेश नारायण सिंह देव, काफी खुशी जताई है उन्होंने कि मेडल पे मेडल टीम लेके आ रही है। इससे पहले ब्यूनस आयर्स में जो अर्जेंटीना में है वहां पर हमने 8 मेडल जीते थे, 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, तो इस लिहाज से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि जो कमी एक आप कह सकते हैं कि मनु भाकर से उम्मीद होती है, कई बार ये होता है कि आपके जो डेकोरेटेड विनर्स मेडलिस्ट होते हैं उनसे उम्मीद आपकी बढ़ जाती है। तो ओलंपिक मेडलिस्ट में जैसे स्वप्निल कुसाले हो या सरबजोत सिंह हो, मनु भाकर हो, तो वहां पर उस दिन उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि मनु भाकर के साथ एक नए पार्टनर भी थे, उन्होंने मिक्स्ड में सरबजोत के साथ जीता था ओलंपिक्स में, यहां पर एक अलग पार्टनर के साथ वो खेल रही थी आदित्य मालरा, तो 570 का स्कोर लिया। कि हालांकि यहां पर जो शूटर्स जो जीत के आए उनकी आज बात करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड गोल्ड जो आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता ने जीता, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा शक्ति कि जो हमारे शूटर हैं उसमें से जो मिक्स्ड इवेंट था उसमें हमने चाइना के वैंग जिफाई और सेंग लियाओ एक ऐसे शूटर है जो डेकोरेटेड 2024 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, 2024 में ही 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में वो गोल्ड जीता दूसरे अन्य अपने सहयोगी के साथ, और 2020 से टोक्यो ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने सिल्वर जीत चुके हैं। तो आप ये समझिए कि एक तरफा मुकाबला रहा, फाइनल में 17-7 का स्कोर था, ऐसे शूटर्स को हराना ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब मैं इनका आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता का नाम ले रहा हूं तो एक नाम 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह का नाम भी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। 19 वर्षीय सुरुचि सिंह जो एक नई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जिताया। फिर उसके अलावा जो काफी एक दो साल से नाम आ रहा है स्विफ्ट कौर का 50 मीटर राइफल थ्री प्रोन जो उसमें होते हैं, उन्होंने ब्रोन जीता। फिर 10 मीटर एयर राइफल में इलावेलिन वलारिन जैसे आपने रिपोर्ट में बताया। तो शूटर्स की जो पौध है काफी बड़ी है और हर साल हमें कोई नए नाम आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार आप ये सुनेंगे कि भारत के लिए ओलंपिक्स में कोटा तो किसी और ने लिया, लेकिन जब फाइनल जब क्वालिफिकेशंस आता है या फाइनल जब फॉर्म की बात आती है तो कोई अलग कोई और शूटर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसी लंबी फेहरिस्त है शूटर्स की जिसमें भारत जो है कम से कम वहां पर हर एक इवेंट में वहां पर टॉप शूटर्स हम देते हैं।
जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि राजवर्धन सिंह राठौर के सिल्वर मेडल से जो पूरी परंपरा शुरू हुई थी।
बिल्कुल, वो दिन तो मैं भूल नहीं सकता। मैं 17 अगस्त 2004 का दिन था और मार्को पोलो शूटिंग सेंटर एथेंस में जब राजवर्धन निशाना साध रहे थे, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में बहुत कम लोग जानते होंगे उस वक्त वो कहां रहते हैं। मैं उस वक्त दूरदर्शन की टीम में था और हम लोग न्यूज रूम में उस वक्त उस दिन दिल्ली में जो है टेलीविजन जो ऑपरेटर्स है वो स्ट्राइक पे थे और हम उनकी वाइफ को डॉक्टर गायत्री उनको हम स्कोर दर स्कोर उनको हम फोन पे बता रहे थे। और उसके जीतने के बाद जब सुनील दत्त साहब खेल मंत्री थे, जब वो आर्मी कैंट यहां पर धौला कुआं के पास जब वो गए दिल्ली में उनसे मिलने उनके परिवार से मिलने, तो और भी कई चीजें पता चली। उनके फादर भी आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं तो वो परिवार काफी बड़ा जो शूटिंग का एक उन्होंने शुरुआत की। फिर गगन नारंग हुए, अभिनव बिंद्रा हुए, उसके अलावा से एक तो एक फेरिस्त बन गई।
जी पूरी एक बहुत लंबी तहरिस्त है भारत के पास शूटिंग खिलाड़ियों की। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत के लिए दावेदारी महज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने का प्रयास नहीं, बल्कि ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश के युवाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों से निपटने की सुविचारित योजना है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि ओलंपिक 2036 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 जैसी प्रतियोगिताओं की मेजबानी की तैयारी का मतलब है विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, आर्थिक निवेश और एक ऐसी प्रणाली को तैयार करना जिसका फायदा सीधे खिलाड़ियों को मिले। गिरीश जी, इस पे हम बात करना चाहेंगे कि भारत लगातार अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है 2036 के ओलंपिक को लेकर के, इतने बड़े आयोजन को लेकर के कितना तैयार है भारत?
देखिए, भारत की तैयारियां तो अभी से करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत ने लेटर ऑफ इंटेंट जो पिछले साल ही वो सौंप दिया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, जो ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, और अगले महीने एक डेलीगेशन भी जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का आईओए का वो लुजान स्विट्जरलैंड में वहां पर जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर जाएगा और उस तरह की सारी अपने पहलुओं को रखेगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और एथलीट डेवलपमेंट, ये तीन मुख्य पहलू हैं जिस पे बात होगी और फिर एक होस्ट सिटी को चुना जाएगा और जहां पर फिर उसके बाद बजट जो है जो मुख्य तौर पर संसद से पारित होगा फिर उस पर काम होगा। तो भारत ने न सिर्फ 2036 ओलंपिक्स बल्कि आने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी भारत ने सोचना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमने सिर्फ अभी तक 1951 और 1982 के एशियन गेम्स और 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स हमने आयोजन किया है, तो इस लिहाज से भारतीय सरकार और अन्य जो और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ी विषय का सवाल है।
जी गिरीश जी, पुरुषों और महिलाओं के लिए हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कल से चेन्नई में शुरू होगा। यह अपनी तरीके का एक अलग आयोजन होगा जो वरिष्ठ खिलाड़ियों को मंच प्रदान करेगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु की हॉकी इकाई द्वारा आयोजित हॉकी इंडिया मास्टर्स कप चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात होगी इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु। यह प्रतियोगिता 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों और 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है। 10 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 पुरुष और 8 महिला टीमें भाग लेंगी। पुरुषों की टीमों को 4 पूल में बांटा गया है, जिनमें से पूल ए में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। पूल बी में ओडिशा, पंजाब और पुदुचेरी तथा पूल सी में चंडीगढ़, महाराष्ट्र और मणिपुर शामिल हैं। वहीं अंतिम पूल डी में हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा को रखा गया है, जबकि महिला वर्ग में दो पूल बनाए गए हैं, जिनमें से पूल ए में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल तथा पूल बी में ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु को रखा गया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का यह उद्घाटन संस्करण भारतीय हॉकी में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, जो अनुभवी खिलाड़ियों को एक समर्पित मंच प्रदान करेगा। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
उधर लंदन में चल रही हॉकी प्रो लीग में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों में से कोई भी टीम अभी गोल नहीं कर सकी है, और जैसा देखा जाए कल कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार का स्वाद चखने के बाद भारत की आज उम्मीदें होंगे कि वह शानदार प्रदर्शन करे और इस मैच में जीत हासिल करे। इस मुकाबले पे क्या कहना चाहेंगे गिरीश?
खैर, फिलहाल तो अभी जो पहला हाफ है उसका 5 मिनट बचा हुआ है और दोनों ही टीम अभी गोल रहित है, तो इस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि भारतीय रक्षा जो कवच है उसकी तो एक तरह से जीत है। लेकिन जो मुख्यतः जो माना जाता है दूसरा हाफ, जहां पर हम पिछड़ जाते हैं, और हरेंद्र सिंह की ये टीम अब तक आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी जो उन्होंने चुनौती कही थी जो इस टूर्नामेंट से पहले, वो ये थी कि हम पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करें और हमारे गोलकीपर वहां पर वो रक्षा सेव करें। तो वहां पर हम ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर हम ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पा रहे पहले की बनिस्बत, हालांकि हमने किया है जो एक आप ये कह सकते हैं कि एक प्रमोशन हुआ है, लेकिन बहुत सारी कमियां अभी है, इनको दूर करना है। शक्ति
जी, बिल्कुल। और आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजी महिला रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 727 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं। 28 वर्षीय मंधाना ने नवंबर 2019 के बाद पहली बार रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं क्रिकेट से एक और खबर, जहां पर एक बहुत रोचक मुकाबले में ग्लासगो में सोमवार को ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जहां नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच एक मुकाबला 3 बार सुपर ओवरों में पहुंचा, इसके बाद आखिरी में रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। दोनों खबरों पर थोड़ी थोड़ी नजर डालना चाहेंगे गिरीश जी।
हम बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि 152 का जो स्कोर नीदरलैंड्स ने किया वो नेपाल ने आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, तो नंदन यादव लास्ट के आखिरी 4 गेंदों में 4 रन, 2 रन, 2 रन, 4 रन बना के उन्होंने 152 भी टोटल किया। अब उसके बाद आता है पहला सुपर ओवर जिसमें नेपाल ने एक विकेट खोकर 19 रन बनाए, तो फिर वहीं पर नीदरलैंड्स ने भी जो अपना है 19 रन बनाया, आखिरी 2 गेंद पर 10 रन बनाए और इस तरह से 19 रन बना के फिर दूसरे सुपर ओवर में गए। दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की, 17 रन बनाए और वहां पर फिर 17 और 17 पे ही मुकाबला बराबर पे किया। तो पहली बार है किसी भी आईसीसी की टीम, मतलब मैं इंटरनेशनल फॉर्मेट की बात करूं या लिस्ट ए की बात करूं, तो वहां पर पहली बार ऐसा हुआ जिसमें कोई भी टीम 3 सुपर ओवर में गई। हालांकि आईपीएल में हो चुका है, लेकिन थर्ड सुपर ओवर में जब बात हुआ तो वहां पर नेपाल की टीम दोनों विकेट उन्होंने 0 पे गवा दिया और यहां पर नीदरलैंड ने पहली बॉल पर छक्का लगा दिया। तो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला था।
बिल्कुल, आपने सही कहा कि रोमांच के साथ इस मुकाबले का अंत हुआ। और अब समाचार योग जगत से। इस महीने की 21 तारीख को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली स्थित मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों के मुख्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये सभी प्रतिभागी यहां से निकल के अपने अपने देशों में जाएंगे, जहां पे योग संस्कृति को लेकर के जो भी पहले चलाई जा रही है उनका प्रचार प्रसार करेंगे और प्रोत्साहन के लिए लगातार योग के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। गिरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पे हमसे खोल के बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।